क्षितिज एक सार्थक यात्रा नई क्षितिज की ओर, जिसमें आप सभी का हार्दिक स्वागत है।
विश्व हिंदी सचिवालय के पाक्षिक कार्यक्रम क्षितिज में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। कहते हैं साहित्य समाज का दर्पण होता है, समाज साहित्य से बनता है, साहित्य समाज को उसका मार्ग प्रदर्शित करता है। अलग एक दूसरे से ये हो नहीं सकते, और जब तक जीवन है तब तक समाज भी है और साहित्य भी है। आज हमारी मेहमान हैं डॉक्टर मंजू मेहता जी। आप भोपाल से हैं, आप प्राध्यापक हैं। आपके बारे में इतना लंबा चौड़ा है बोलने के लिए कि, लेकिन फिर भी बिना बोले तो रहा नहीं जाएगा। आप जनसंपर्क अधिकारी हैं, हिंदी की लेखिका भी हैं, हिंदी की कहानियाँ भी लिखती हैं, हिंदी से जुड़ी हुई भी हैं, समाज शास्त्र में बीएड किया है, और सबसे बड़ी बात आपने एलएलबी भी किया है। साथ ही 32 वर्षों तक आप अध्यापन से जुड़ी रहीं, और इससे अलग लेखिका तो हैं ही, रेडियो से भी जुड़ी हुई हैं आप। कहाँ कहाँ नहीं जुड़ी हुई हैं, जितना कहा जाए आपके बारे में उतना कम है। अनेकों सम्मान भी आपको मिले हैं, तो मैं कुछ कहूँ इससे बेहतर है आपसे ही आपके बारे में हम कुछ जानें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा।
नमस्कार कल्पना जी, धन्यवाद। आपने मेरा इस विशाल मंच से, इस खास स्टूडियो से जिस तरह मेरा स्वागत किया और मेरे बारे में कहा। मैं भोपाल से हूँ, झीलों का शहर
जी,
मध्य प्रदेश, जो कि भारत का हृदय स्थल। और मैं इस समय भोपाल के एक प्रतिष्ठित कॉलेज, भोपाल स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज में प्रोफेसर हूँ, साथ ही साथ जनसंपर्क अधिकारी हूँ। कॉलेज हमारा नैक से A+ ग्रेड है
जी,
और साथ ही हमारे कॉलेज में लगभग 5,000 विद्यार्थी हैं जो वैश्विक स्तर की शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं।
बहुत सुंदर। सबसे बड़ी बात यह है, हमारा क्योंकि समय हमारे पास कम है, बातचीत कुछ ज़्यादा ही करनी है, इसलिए आपसे पहला प्रश्न तो मेरा यही रहेगा कि LLB आपने किया है
जी,
वकालत है
जी,
पढ़ाई की है उसकी, लेकिन आप लेखन में कैसे हैं, इसके बारे में कुछ कैसे लेखन में आई हमारे श्रोताओं को बताएं।
कल्पना जी, लेखन में मैं जब कॉलेज में पढ़ रही थी तभी इच्छा होती थी कि कलम उठाऊं और कुछ लिखूं
जी,
तो लेखन में रुचि तभी से थी। और रही LLB की बात, मैंने ग्रेजुएशन के बाद, जब मेरी शादी भी हो गई थी उसके बाद मैंने LLB किया। दिल में तमन्ना थी कि मैं भी काला कोट पहनूं और जाके कोर्ट में, मेरा स्पेशलाइजेशन क्रिमिनोलॉजी में है तो मैं वकालत करूं। लेकिन परिवार में अपने इकलौती बहू होने के कारण मेरी सास की तमन्ना थी कि मेरी बहू वकालत के लिए ना जाए, तो मैं शिक्षण के क्षेत्र में आ गई। तो मैं वकालत की प्रैक्टिस नहीं कर पाई, सिर्फ डिग्री मेरे पास है।
ओके, लेकिन ये वकालत का फिर भी कुछ कुछ असर तो रहता ही है व्यक्ति के ऊपर
जी,
तो लेखन में आपने कहीं उसका इस्तेमाल किया?
अगर आपने लेखन से इसको जोड़ा है तो मुझे लगता है जब मैं लिखती हूँ तो वो असर आता है। आज आपने कहा तो मैं उसको सोच पा रही हूँ कि जब हम सामाजिक चीज़ों पर अपनी कलम चलाते हैं, लिखते हैं, तो कहीं ना कहीं न्यायपूर्ण चीज़ें हमारे मस्तिष्क में आती हैं।
बिल्कुल,
हमें लगता है हम अपने आप से जब तर्क वितर्क करते हैं तो उस तर्क वितर्क में एक सही फैसला करने में सक्षम होते हैं।
बिल्कुल, क्योंकि जो जीवन दिखाई देता
जी,
है
जी,
और जो जीवन असलियत में होता है, जो लोग जीते हैं
जी,
उसके अंदर बहुत फर्क होता है,
बहुत फर्क,
बहुत फर्क होता है। क्योंकि वकालत भी जो करता है, जो पढ़ता है और जो करता है,
बहुत
उसमें भी जो है तारतम्य बैठाना बहुत मुश्किल होता
तो
है।
तो यहाँ विवेक मेरा साथ देता है।
बिल्कुल,
तो उससे सही और गलत सोचती हूँ, फैसला कर पाती हूँ
जी। विवेक हर मार्ग पर, हर कदम पर व्यक्ति का साथ देता है, बिना विवेक के कुछ हो नहीं सकता
जी। कल्पना जी, जब समझ विकसित हो जाती है तो हम अपने आप को सही रास्ते ले जा पाते।
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी चीज़, आप दूरदर्शन से भी जुड़ी हैं, जानकर बहुत अच्छा लगा। दूरदर्शन के अपने कुछ अनुभव हमारे श्रोताओं के साथ साझा करें।
ज़रूर ज़रूर कल्पना जी, मैं दूरदर्शन, हमारा मध्य प्रदेश में शुरू हुआ
जी
1994 में, 1994 शुरुआत के तीसरे चौथे दिन मैंने समाचार पढ़ा
जी।
मेरा वहाँ सिलेक्शन न्यूज़ रीडर की हैसियत से हुआ और तब से लेकर आज तक मैं न्यूज़ रीडिंग कर रही हूँ।
बहुत बढ़िया,
मतलब मैं कह सकती हूँ फख्र से कि मैं मध्य प्रदेश ही नहीं, शायद मैं इंडिया में सीनियर मोस्ट न्यूज़ रीडर हूँ, जो 33 साल से इस मंच से समाचार पढ़ रही हूँ। और सबसे फख्र की बात है, मुझे इन कार्यों में और जर्नलिज्म के क्षेत्र को देखते हुए
जी।
मुझे कोलकाता की एक यूनिवर्सिटी ने ऑनरेरी डॉक्टरेट दिया है।
बहुत
तो
बहुत
ये बड़ा सम्मान इस मंच के माध्यम से जो मुझे मिला, इसके लिए मैं खुद को गर्व महसूस करती हूँ। और इसके लिए सबसे बड़ा क्रेडिट मैं अपने हस्बैंड को, जिनका हमेशा मुझे सहयोग मिला
जी,
और मेरे बच्चों की मोटिवेशन को और मेरे परिवार की मजबूती और सहारे को देती हूँ।
देखिए, बिना परिवार के सहारे के, मोटिवेशन के, बच्चों के, पति के, कोई भी महिला आगे नहीं बढ़ सकती
जी।
सक्षम तभी होगी जब चारों ओर से उसको सपोर्ट मिले, सहायता मिले, उसको एक एनकरेजमेंट मिले। अगर वो नहीं मिलेगा तो आगे बढ़ पाना किसी के लिए भी बहुत मुश्किल कार्य होगा। तो आपने अभी बताया इतने क्षेत्रों में आप काम कर रही हैं, इतनी आगे बढ़ रही हैं, नौकरी है, परिवार है, बच्चे हैं, आसान नहीं होता है आगे बढ़ना, तो इनका आपने किस तरीके से इनको एक साथ जोड़ा, कैसे निभाया, कैसे आगे बढ़ी?
आपका मकसद सामंजस्य का है।
बिल्कुल।
तो नौकरी करते हुए पूरी तरह से हाउसवाइफ रहना, ये बहुत बड़ा चैलेंजिंग तो है, लेकिन मुझे लगता है बहुत आसान भी है। यह आसान कब हो जाता है? जब परिवार से पूरा सपोर्ट मिलता है।
बिल्कुल।
जब हम अपने कामों को पूरी तरह ईमानदारी से अंजाम देने लगते हैं और हमारे घर वाले खुद ब खुद हमारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करने लगते हैं
जी।
हमें प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग देने लगते हैं, हमारा मनोबल बढ़ जाता है।
बिल्कुल बिल्कुल।
हम तीज त्योहारों पर चीज़ें भी खुद बनाना पसंद करते हैं। हम लोगों का अच्छी तरह से वेलकम करना, घर को साफ सुथरा रखना, अपने आप को कैरी करना, परिवार को लेकर चलना, ये सब खुद ब खुद तब कर पाते हैं जब हमें अपने बच्चों से, परिवार वालों से हमें सहयोग मिलता है।
बिल्कुल। जब सहयोग मिलेगा तभी आप मान, देखिए ना, लेखन जो है उसके लिए आपका फ्री माइंड होना बहुत जरूरी,
बहुत जरूरी,
बहुत जरूरी है। और वो तभी हो पाएगा जब चारों तरफ से आपको लगे कि हाँ, आप इस राह पर चल सकती हैं
और हमारे साथ हमारा जो साथी है वो हमें, हमारे लिए मददगार है। मदद में मकसद उनका हमारे साथ काम में हाथ बटाना नहीं, हमारा मनोबल मजबूत तभी होता है जब हमें मोटिवेशन मिलता,
मोटिवेशन मिलता है। मनोबल तभी आगे बढ़ेगा जब चारों तरफ से जो है आपके साथ लगे कि हाँ, आज सब लोग एक साथ खड़े हैं।
वो कहते हैं ना, जब सब तरफ से चीजें जुड़ जाती हैं तो हर असंभव भी संभव हो जाता है।
संभव हो जाता है। आप कवित्री हैं,
दुनिया हमारे हाथ में होती है।
बिल्कुल बिल्कुल। तभी आप उस दुनिया को पार पा सकती
हैं और उस जीत का मजा अलग होता है,
उसका मजा,
उसको हम वास्तव में आनंद लेते हैं। वो आनंद हमारे अकेले का नहीं होता, वो एक पारिवारिक सामूहिक विशाल आनंद हो जाता है।
केवल आनंद ही नहीं, वो आपको जो मोटिवेशन देता है, आपको जो आगे बढ़ने की क्षमता होती है, उसको 10 गुना आगे बढ़ाता है। और आप बिना किसी की चिंता किए, बिना कोई एक परेशानी या कुछ उसको लेकर के आप आगे बढ़ते हैं
जी। और कल्पना जी, जैसे मैंने कहा, मेरा परिवार मेरा स्ट्रेंथ है।
बिल्कुल।
आज मेरे भाई बहन, मम्मी, मेरे पापा, मतलब वो अभी नहीं है लेकिन फिर भी मेरे
वो
साथ,
आपके साथ हैं।
जैसे मैं न्यूज पढ़ती हूँ और वो मुझे बताते थे, मंजू तुमने उर्दू का ये वर्ड करेक्ट उच्चारण नहीं किया, तो आज भी जब मैं पढ़ रही होती हूँ पापा की वो आवाज मुझे आज भी आती है।
बिल्कुल। उनका जो प्रेम है, उनका जो लगाव, आशीर्वाद,
उनका मार्गदर्शन, फिर मेरे बेटा और बेटी, इनका हर बार के, अरे मम्मा आप कुछ करो ना, आप कर सकते हो, आप ऐसा नहीं, ये करो, तो ये चीजें हमें
मंजिल के और करीब
ले आती हैं।
तो मंजिल के करीब जब थोड़े हैं ही हैं, तो आपकी एक आध कविता हो जाए
आपके श्रोताओं के लिए,
श्रोता जो है वो सुन
पाएं।
मैं
लिखती बिल्कुल जिसे कहा जाए दिल की बात।
बिल्कुल।
मन में विचार आए, लिख दिया।
बिल्कुल।
एक मैंने बहुत सिंपल सी कुछ शब्द पुरोए हैं, मैं सुनाना चाहूंगी। कुछ तो है
जी,
सुबह की ठंडी फिजा को रंगीन करता सूर्योदय, इसी तरह दिन की तपिश से ढलती शाम कुछ तो है।
बिल्कुल,
ये अनेक रंजो गम हर सिसकती जिंदगी में फिर भी चेहरा फूल सा खिलखिलाता, कुछ तो है,
कुछ तो है।
पतझड़ में तरसती हरियाली, पतझड़ में तरसती हरियाली, खग वृंद खोजते नीर, आता बसंत खिल जाती प्रकृति, पुनरागमन कुछ तो है। जन्म लेती पलती कन्या
जी,
खिलती कली फूल सी, पराए घर में दिल का टुकड़ा विदा करना कुछ तो है,
कुछ तो है।
रात में चंदा चमकता, तारों की बारात लाता, भोर के आगमन से पहले उसका चले जाना कुछ तो है,
तो है। बहुत सुंदर।
चमक से जब भ्रमित होकर, चमक से जब भ्रमित होकर राह पर मनुष्य डोलता
जी,
चमक से भ्रमित होकर अपनी राह पर जब मनुष्य डोल जाता, जीत होती संस्कारों की।
बहुत खूब।
इंसानियत कुछ तो है,
कुछ तो है,
कुछ तो है, यही जिंदगी कुछ तो है। कुछ कल्पना तो है। जी,
कुछ नहीं है, बहुत कुछ है,
और
यही जिंदगी है। यही
मेरा मॉरिशियस आना, आपके साथ इस स्टूडियो में बैठना, भविष्य तो, की खूबसूरत यादों को पिरोना, कुछ तो है।
कुछ नहीं है, बहुत कुछ है। आपके साथ मिलकर बैठना, बातें करना, आपकी कविताएं सुनना, और कुछ नया ऐसा हो जो आप लिख रही हो।
जी, मैंने मेरे प्रकाशन आर्ट है, और अभी मैं लिख रही हूँ मिलेट्स पे भी। मेरी एक पुस्तक अभी आ रही है।
जी,
जैसे आज हमने अपने खान पान में मिलेट्स का बहुत शामिल कर लिया है कि ग्लूटन फ्री खाना है, तो ग्लूटन मुक्त मिलेट्स क्यों है खास, इस पर मेरी एक पुस्तक आ रही है। और इससे पहले मैं कोविड द सीरियल किलर पर लिख चुकी हूँ, जर्नलिज्म पर मेरी पुस्तक है, रेडियो जॉकी पर मेरी पुस्तक है, हिंदी व्याकरण मेरी एक पुस्तक है, इसके अलावा कविताओं के संग्रह हैं
जी,
और एक मैं अपने पापा की तमाम स्मृतियों को संजोकर एक पुस्तक बहुत जल्दी लेकर आने वाली हूँ, वो भी मेरे प्रकाशन में शामिल है।
बहुत खूब, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। और अभी आपने मिलेट का नाम लिया
जी,
तो हमारे, हो सकता है हमारे कुछ श्रोता उसके बारे में भी दो चार शब्द आपसे सुनना चाहें, जो आजकल काफी समाचारों में आ रहा है। मोदी जी ने भी इसके ऊपर काफी कुछ कहा है, उसके वो पुस्तकें निकल रही हैं। हालांकि साहित्यिक कार्यक्रम है, लेकिन इसको भी हम कहीं परिवार से जोड़ करके, कहीं साहित्यिक बना करके आपसे कुछ सुनना चाहेंगे।
कल्पना जी, सेहत है तो साहित्य है,
बिल्कुल,
और सेहत है तो उसके लिए मिलेट्स बहुत जरूरी है।
बहुत खूब।
यहाँ मैं ये बताऊंगी, जैसे आपने मोदी जी का नाम लिया, हमारे संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष घोषित कर दिया है
जी।
अब ये मिलेट्स हैं क्या? ये असल में छोटी घासों का समूह है
जी।
ये हमारे पुराने लोग खाया करते थे, जो मोटा अनाज होता था
जी,
और ये ग्लूटेन मुक्त होता है, सो ये सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है,
फायदेमंद है। बहुत अच्छा लगा आज आपसे बात किया। कार्यक्रम छोटा ही है
जी,
अगली बार अगर आप आए हमसे मिलें, हम फिर से आपके साथ एक कार्यक्रम करेंगे जिस साहित्य पर आधारित हो और आपकी कविताओं का आनंद उठाएंगे। तब तक के लिए हम श्रोताओं को कहेंगे नमस्कार, आपको धन्यवाद देंगे, और अगर जीवन है, समय है, तो फिर अवश्य मिलेंगे,
जरूर
तब
मिलेंगे।
तक के लिए धन्यवाद,
जरूर मिलेंगे। धन्यवाद कल्पना जी, नमस्कार।
क्षितिज एक सार्थक यात्रा नई क्षितिज की ओर।